पृष्ठ संख्या 94। एशिया भारत। दोनों महायुद्धों के बीच की कालावधि में एशिया के हर देश में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रचार प्रसार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के शीघ्र बाद इस आंदोलन का एक नया दौर शुरू हो गया। यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन आंदोलन का दौर था। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार मचाया। इस हत्याकांड के शीघ्र बाद असहयोग आंदोलन छेड़ा गया, जिसमें लाखों आम लोग शामिल हो गए। किसान, मजदूर, छात्र, स्त्रियां तथा समाज के अन्य वर्गों के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश सत्ता का खुल्लम खुल्ला विरोध करना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। 1929 के अंत में कांग्रेस ने, जो कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1930 में एक व्यापक जन आंदोलन छिड़ गया और लाखों लोगों ने ब्रिटिश शासकों के कानूनों को भंग करके जेल यात्राएं की। राष्ट्रवादी संघर्ष के एक अंश के रूप में ही एक नए भारत की कल्पना विकसित हुई। स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समानतावादी भारत की कल्पना। यहाँ संघर्ष देश के उन भागों में भी फैल गया जिन पर ब्रिटिश समर्थन से भारतीय नरेश शासन कर रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अन्य उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन तथा उपनिवेशी देशों के फांसीवाद विरोधी आंदोलन से भी नज़दीकी संबंध स्थापित किए। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीय समाज की पुनर्संरचना को एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। दुनिया के मामलों में स्वतंत्र भारत की क्या भूमिका होगी, इसकी रूपरेखा भी स्वतंत्रता संग्राम के इसी दौर में निर्धारित हुई। हर देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के तत्कालिक लक्ष्य के लिए दो लोगों को संगठित किया। साथ ही सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण एवं आधुनिक राष्ट्र की संरचना से संबंधित विचारों को भी अधिकाधिक बल मिला। चीन, साम्राज्यवाद विरोधी लहर। 1911 की क्रांति में डॉक्टर सुनयात सेन की भूमिका। उस क्रांति के फलस्वरूप चीन का गणतंत्र घोषित किया जाना था तथा सम्राट बनने का सपना देखने वाले युआन शिकाई का सत्ता हत्याना। इन बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। चीन का शासन युद्ध नेताओं के हाथों में था, जो चीन के अलग अलग क्षेत्रों पर हावी थे और एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उन्हें विभिन्न विदेशी ताकतों से मदद भी मिलती थी और बदले में वे उन्हें तरह तरह की रियायतें देते थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में चीन में दो मुख्य सरकारें थीं। इनमें से एक पर गोमिंतांग का नियंत्रण था, जिसका मुख्यालय कैंटन में था। डॉक्टर सुनयात सेन का इस सरकार के राष्ट्रपति बने। दूसरी सरकार का प्रधान एक जनरल था और मुख्यालय बीजिंग में था। पेरिस शांति सम्मेलन में जब शांतुंग को जापान को सौंप देने का फैसला किया गया, तो 1919 में चीन में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लहर खड़ी हुई। इसकी शुरुआत 4 मई 1919 को बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से हुई। इस घटना के साथ आरंभ होने वाले आंदोलन को 4 मई का आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन शीघ्र ही चीन के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। चीन के राष्ट्रवादियों पर रूसी क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वहां आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल प्रवृत्तियां उभरने लगी। 1921 में चीनी साम्यवादी दल का गठन किया गया, जो शीघ्र ही चीन की एक बड़ी ताकत बन गया। चीन को एक करने में पश्चिमी देशों में से कोई मदद पाने में कामयाब होकर डॉक्टर सुनयात सेन ने सोवियत संघ से सहायता मांगी। 1924 में गोमिंदांग और साम्यवादी दल साथ हो गए। साम्यवादी दल एक पृथक दल के रूप में कायम रहा, लेकिन साम्यवादी लोग गोमिंदांग में भी शामिल हो गए। तय किया गया कि एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना खड़ी की जाए। इस प्रयोजन को अमली जामा पहनाने के लिए सोवियत सैनिक तथा राजनीतिक सलाहकारों की सहायता में एक रक्षक अकादमी स्थापित की गई। 1925 में चीनी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना ने युद्ध के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। लेकिन मार्च 1925 में डॉक्टर सुनिया सेन की मृत्यु हो गई और उसके लगभग 2 वर्ष बाद चीन की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। गोमिंदांग और साम्यवादी दल के बीच का गठजोड़ टूट गया और उसके शीघ्र बाद गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई। चीन में गृह युद्ध, चीन के राजनीतिक एकीकरण की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना के अभियान के साथ साथ श्रमिकों तथा किसानों के आंदोलन भी आरंभ हो गए। 1925 में शंघाई में हड़तालें और प्रदर्शन के लिए किए गए कार्यों को यह बात यह हुई थी कि जापानी उद्योगपतियों ने कुछ श्रमिक नेताओं को मरवा डाला था और ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई थी। ये हड़तालें और प्रदर्शन इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ किए गए थे। मार्च 1927 में जब राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना नानजिंग पहुंची तो ब्रिटिश और अमेरिकी युद्धपोतों ने उन पर गोलियां बरसाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस समय गोमिंदांग को हार हो गया था और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष जनरल चियांग काई शेक ने नानजिंग में अपनी सरकार स्थापित की। किसानों तथा मजदूरों के आंदोलनों के प्रबल हो उठने और गोमिंदांग में वामपक्षी तत्वों की बढ़ती हुई ताकत से वह चौंक उठा जब उसे चीन पर से विदेशी प्रभुत्व समाप्त करने और देश के राजनीतिक एकीकरण की चिंता कम थी और वामपक्षियों तथा साम्यवादियों को दबाने की ज्यादा। उसके सैनिकों ने शंघाई में श्रमिकों के इलाकों पर हमला किया और हजारों श्रमिकों तथा साम्यवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 1927 में साम्यवादियों के नेतृत्व में केंटन में एक विद्रोह हुआ और वहां उन्होंने एक सोवियत सरकार स्थापित कर ली, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया और 5,000 श्रमिकों को मार डाला गया। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन में विभेद पैदा हो गया। सोवियत सलाहकारों को निकाल दिया गया और गोमिंदांग के बहुत से नेताओं को, जिनमें डॉक्टर सुनिया सेन की विधवा भी शामिल थी, देश निकाला दे दिया गया। कैंटन विद्रोह के दबा दिए जाने के बाद साम्यवादी लोग देश के विभिन्न भागों में बिखर गए और वे कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले आए। अब चीन में गृह युद्ध का एक लंबा दौर आरंभ हो गया जिसमें एक ओर चियांग काई शेक की सेना थी और दूसरी ओर चीनी साम्यवादी दल। जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया तो पूरा चीन जापान विरोधी भावना से आंदोलित हो उठा और वहां जापानी माल के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ हो गया। लेकिन गोमिंदांग, जिसका नेता अब चियांग काई शेक था, और साम्यवादी लोग जापान के खिलाफ एक ना हो सके। साम्यवादियों ने जापानी माल के बहिष्कार की आवाज अवश्य बुलंद की, लेकिन वे चियांग काई शेक से गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं थे। उधर चियांग काई शेक की सेना ने जो मुहिम शुरू की थी वह जापानियों के खिलाफ नहीं बल्कि साम्यवादियों के विरुद्ध थी। इस बीच साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इस काल में साम्यवादी दल का जो सबसे महत्वपूर्ण नेता उभरा था, माओ जेडोंग, माओ त्से तुंग, उसने इस विचार की हिमायत की कि चीन में किसान मुख्य क्रांतिकारी शक्ति है और उसने कृषक वर्ग की सहायता से ही क्रांति लाने की रणनीति अपनाई। 1934 में चियांग काई शेक ने कोई 10 लाख की सेना के साथ दक्षिणी चीन के साम्यवादी अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। साम्यवादियों को विनाश से बचने के लिए अपने गढ़ का त्याग करना पड़ा। कोई 1 लाख साम्यवादी उत्तर पश्चिम चीन में एनान प्रदेश की ओर चले गए। इस देशांतरण में उन्होंने कोई 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। लंबे कूच, लॉन्ग मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना से पूरे देश में साम्यवादियों की लोकप्रियता बढ़ गई। इस कूच के दौरान उन्होंने जमींदारों की जमीनें छीनकर किसानों में बांट दी। इस तरह वे चियांग काई शेक की सरकार के खिलाफ अपने समर्थन के आधार को लगातार दृढ़ बनाते रहे। अब तक लोगों के मानस में चियांग काई शेक सरकार की जो छवि बन गई थी वह यह थी कि वह बड़े जमींदारों, व्यापारियों और बैंकरों की सरकार है। एक और तो साम्यवादी जापानी अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी युद्ध का आह्वान कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर चियांग काई-शेक की सेना केवल साम्यवादियों के पीछे पड़ी हुई थी। 1937 में जापान ने चीन पर भारी हमले शुरू कर दिए। चियांग काई-शेक की सरकार इन हमलों के सामने टिक नहीं सकी और पीछे हट गई। उसकी सरकार नानजिंग छोड़कर चुंगकिंग चली गई, लेकिन अब तक जापानी आक्रमण के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन चुका था। इसकी शुरुआत दिसंबर 1936 में एक नाटकीय घटना से हुई। चियांग काई शेक अपनी सेना को साम्यवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए मनाने के उद्देश्य से सियान गया। उसकी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तभी मुक्त किया जब तक वह गृह युद्ध समाप्त करके जापानियों के खिलाफ लड़ने के लिए साम्यवादियों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर राजी न हो गए। उस समय से जापानी अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध युद्ध का एक आभास बराबर बना रहा। दोनों पक्ष यानी चियांग काई शेक की गोमिंदांग तथा माओत्से जेडांग के नेतृत्व में साम्यवादी लोग एक दूसरे के विरुद्ध मन में शंका पाले रहे और एक दूसरे के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इस काल में साम्यवादी लोग जापानी अतिक्रमण के विरुद्ध चीन के राष्ट्रीय संघर्ष के सच्चे प्रतिनिधियों के रूप में सामने आए। कोरिया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जापान के औपनिवेशिक शासन से कोरिया की मुक्ति का आंदोलन तीव्र हो उठा। रूसी क्रांति से भी कोरिया में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के प्रसार में सहायता मिली। 1918 में कोरिया के राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र तैयार किया। मार्च 1919 में यह घोषणा पत्र सियोल की एक सभा में पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद प्रदर्शन किए गए जिनमें हजारों लोग शरीक हुए। शीघ्र ही इन प्रदर्शनों ने देशव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। जापानी सेना ने विद्रोह को कुचल दिया, 8,000 लोग मारे गए और 16,000 गंभीर रूप से घायल हुए। लगभग 50,000 लोग गिरफ्तार किए गए। फिर भी किसानों के विद्रोह और श्रमिकों की हड़तालें चलती रही। चीन, जापान और सोवियत संघ तथा अन्य देशों में बसे कोरियाइयों ने भी कोरिया में जापान विरोधी संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा कर लिए जाने के बाद कोरियाइयों ने कोरिया के साथ ही मंचूरिया में भी जापानियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाइयों का संगठन किया। जापानियों ने कोरिया को चीन तथा बाद में एशिया के अन्य देशों के खिलाफ भी अपने सैनिक अभियानों का अड्डा बना लिया। उन्होंने कोरिया में अपने प्रति वफादार संगठनों की स्थापना करने का भी यत्न किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आक्रामक लड़ाइयों में कोरियाई लोगों के इस्तेमाल का भी प्रयत्न किया।